ओम शांति। भगवान ने यज्ञ रच कर हम सबके हाथों में दे दिया है और कहा तुम इस यज्ञ को सफल करो, इसकी वृद्धि करो, इसको निर्विघ्न करो। गीता में यही महावाक्य इन शब्दों में आए हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने यज्ञ रच कर ब्राह्मणों को कहा, हे वत्सो, इस यज्ञ से तुम देवताओं को तृप्त करो, देवता तुम्हें मन इच्छित फल प्रदान करेंगे। देवता माना देवकुल की आने वाली आत्माएं। हमारा कर्तव्य होता है उन्हें तृप्त करना, उन्हें संतुष्ट करना। हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जिनको बाबा ने अपने यज्ञ में स्वीकार किया है। इस संसार में कोई बहुत बड़ी कंपनी हो, फेमस, और किसी व्यक्ति को उसका सीईओ बना दिया जाता है या मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया जाता है, कितना गर्व रहता है उस व्यक्ति को। उसके परिचय में वो खास बात हो जाती है। भगवान ने जब नई सृष्टि रचने के लिए यज्ञ रचा, हमें उसमें जगह दे दी, हमें उसने योग्य समझा है कि यही मेरी आत्माएं मेरे इस यज्ञ को सफल करेंगी। जान ले सत्य को। उसकी नजर संसार की तरफ आई, शांतिवन बन रहा है, कौन कौन है मेरे रतन। सुधीर भाई फरीदाबाद है ना, फरीदाबाद पर भी नजर पहुंची थी। 30-35 भेज दिए बहनों ने। कितने हैं? 35 हैं। बहनों का भी डेडिकेशन, भाइयों का तो है ही। नजर पड़ी उसकी, कौन मेरे यज्ञ को संभालेंगे। हम सब भाग्य के धनी हैं जिन्हें भगवान ने चुना। मैं आपके सामने 5 बातें रख रहा हूं। टॉपिक तो बहुत बड़ा है ये। मैं कमरे से और यहां आने तक ही सोचा तो बहुत सारी बातें आ गई। फिर मैंने उनमें से 5 ले ली। हमें यज्ञ में सुखदाई बनकर रहना है। मूल्यों से है, सुखदाई बनो। हमें यज्ञ में एक दूसरे को संतुष्ट भी करना है। बहुत बड़ी चीज, ताकि यज्ञ में रहने वाले हर व्यक्ति को लगे हमारा जीवन सिक्योर है, सुरक्षित है, सब कुछ है यहाँ। दादी भी और बाबा भी बहुत ध्यान रखते थे, सबको ऐसे संतुष्ट करो किसी को घर याद ना आए, माँ बाप याद ना आए। शुरू से ही बाबा ने भी ये ट्रेनिंग दी, संतुष्ट करो। हम अपना लक्ष्य बनाए, सुख दें, संतुष्ट करें। तीसरी बात, इस यज्ञ को निर्विघ्न रखें। विघ्न कई हैं, मैं उनकी चर्चा करूंगा। कुछ ऐसे विघ्न भी हैं जिनको लोग नहीं जानते। मैं थोड़े में सभी को जरा जगाना चाहता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे द्वारा यज्ञ में विघ्न पड़ रहा है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात जिनकी श्रीमद् भगवत गीता में बार बार चर्चा है और जो बाबा की मुरलियों में भी बहुत बार आ गई हैं। एक है निष्काम भाव से सेवा करना, 4 बात, और 5 है समर्पण भाव से सेवा करना। बड़ी गहरी बातें हैं दोनों, छोटी नहीं है। हम केवल इससे संतुष्ट नहीं हो जाएंगे कि हम तो समर्पित हैं, समर्पित भाव से सेवा करना। निष्काम भाव, जिसमें हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा काम केवल देना देना है, लेना कुछ नहीं रिटर्न में, ऐसी भावना, मेरे लिए कुछ नहीं, सब कुछ संसार के लिए, इन पर हम चर्चा करते हैं। विश्व सेवा बहुत बड़ा टॉपिक है, ये यज्ञ बाबा ने रचा है, यहां से विनाश ज्वाला भी निकलेगी, सबसे बड़ी विश्व की सेवा होगी। क्या हो जाएगा? सब तमो प्रधान दुनिया पापी लोग इसमें स्वाहा हो जाएंगे। कितनी सूक्ष्म बात है, कोई सोच भी नहीं सकता कि भगवान ने ऐसा यज्ञ रचा है जिसमें ये कलयुगी दुनिया, ये कांटों का जंगल स्वाहा हो जाएगा। आबू के इतिहास में ये वर्णन है कि यहीं यज्ञ रचा था, कौन से महर्षि थे मैं भूल गया, यहीं ऊपर कुंड है उनका, वशिष्ठ मुनि चार राजवंश पैदा हुए थे, जिन्होंने राज किया संसार पर, भगवान ने यहीं यज्ञ रचा। इससे विश्व का कल्याण भी होता है, विश्व में शांति स्थापित भी होती है और दैवी स्वराज भी स्थापित हो जाता है। इस यज्ञ के महत्व को समझें। अब वो दिन आएगा जल्दी, हम सब देखेंगे, जब ये महान यज्ञ महान तीर्थ बन जाएगा। सबने सुनी है मुरलियों में बातें, भारत की ओर सारे संसार की नजर होगी और देखना है चक्र कैसे घूमता है। अब चीन आदि भारत की ओर कटु नजर लगाए हुए हैं, लेकिन ये सब खेल कैसे बदलेगा जादुई तरीके से, दो चार साल में सारा संसार सत्य ज्ञान के लिए, शांति के लिए, सिद्धांतों को जानने के लिए, डिसिप्लिन सीखने के लिए भारत की ओर नजर करेंगे। अब भी यही है संसार में, संसार में अगर किसी को ज्ञान की अभिलाषा होती है तो भारत में आता है, अगर किसी को शांति चाहिए वो भी भारत में आता है, भगवान चाहिए वो भी भारत में आता है। कुछ साल पहले रशिया की 21 बहनों ने समर्पित किया था अपने जीवन को रशियन, उनमें से 9 आई थी ज्ञान सरोवर में, एक अनुभव सुना रही थी, मैं 4 बार भगवान की खोज में भारत में आई, वो छोटी थी और 4 बार आ चुकी थी उससे पहले, मैं आगे आगे थे, मैंने पूछा अमेरिका क्यों नहीं गई, ये प्रश्न कोई भी सुनेगा वो सोचेगा कि भगवान की खोज और अमेरिका में, नो, उसका स्थान तो भारत है, पवित्र भूमि। तो ये महान तीर्थ उदय होगा, अब लाइट हाउस बनेगा बाबा का, ये महान यज्ञ पीस हाउस बनेगा, यहाँ से शांति का संदेश ही नहीं फैलेगा, शांति फैलेगी और कोई दीवारों से नहीं फैलेगी, किन से फैलेगी, हम सब से, हमारी शुभ भावनाएं संसार का कल्याण करती हैं। ध्यान दें, हम साधारण नहीं हैं, हम पूर्वज हैं, इस बात को सभी रियलाइज करें, ये अभ्यास का विषय भी है और डीप रियलाइजेशन का भी, कि हम सभी धर्मों की आत्माओं के पूर्वज हैं। ध्यान से सुन लेंगे मैं जो एक लाइन बोलने जा रहा हूँ, हमारे एक एक संकल्प का इफेक्ट पूरे संसार पर पड़ता है। हमारी शुभ भावनाएं तो संसार के लिए छत्र छाया हैं, ये सब बाबा की मुरलियों में है, मैंने तभी कैच कर लिया था जब बाबा ने बोला था, कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं बाबा, तुम पूर्वज हो, तुम्हारी शुभ भावनाएं संसार के लिए छत्र छाया हैं, और हमारी प्योरिटी विश्व के लिए विश्व रक्षक है, हम भी मास्टर विश्व रक्षक बन जाएंगे। हम रोज योग में आप सभी संसार को वाइब्रेशंस देते हैं, उसका बहुत गहरा इफेक्ट होता है, बहुत गहरा इफेक्ट। आगे चलकर हम सब रियलाइज करेंगे, संसार जब वर्णन करेगा कि योगियों के वाइब्रेशन से ये चीज ठीक हो गई। मैं एक दिन पढ़ रहा था, अभी अभी किसी ने मुझे एक भविष्यवाणी भेजी कि चीन और भी कई वायरस भेजेगा और भारत के कुछ महात्माएं फूंक मारेंगे और वो वायरस वापस चीन में चला जाएगा। मैंने कहा फूंक में तो इतना दम नहीं है, वो तो यहीं तक जाती है, ये हम सब योगियों के वाइब्रेशंस का इफेक्ट होगा, जो प्रकृति के मालिक बन जाएंगे। प्रकृति के मालिक, प्रकृति उनके आदेश का पालन करेगी। जिनके पास साइलेंस पावर बहुत अच्छी हो जाएगी, उनके एक एक संकल्प को प्रकृति फॉलो करेगी। हम सब मिलके यहाँ संकल्प करेंगे ना, कोरोना गो टू चाइना, और ये रुक करेगा चाइना की ओर। लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं, सब तो आनंद ले रहे हैं, खाली समय मिला है मौज मनाने का, थोड़ा तपस्या करनी। कब शांति वन वालों की ऐसी भट्टी होती थी? नहीं ना सुधीर भाई, मुझे बड़ा आनंद आया इस बार। पीस पार जाया करते थे थोड़े थोड़े लोग, लेकिन ऐसा सुंदर मौका मिला है हमें, और इसके बाद एक न्यू टर्न आएगा यज्ञ में। बहुत सुखद दिन, पहले से कहीं ज्यादा चमत्कारी कार्य हम यज्ञ के द्वारा होते देखेंगे। यज्ञ के द्वारा माना हम सब के द्वारा, इसलिए अपने को सभी बहुत जिम्मेदार आत्माएं समझें। बाहर के लोग जब आते हैं हमें देखते हैं, वो हमें देखते हैं। भिन्न भिन्न तरह के लोग आते हैं आजकल, अब यज्ञ पहले वाला नहीं है। हाईली एजुकेटेड, बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, थॉट रीडर्स, फेस रीडर्स, सब तरह के लोग मेरे को तो मिलते हैं ना बहुत, सीबीआई वाले सब आते हैं, मेरे को भी कांटेक्ट करते हैं, हम आए थे आपके यहाँ। लेकिन बाबा का कमाल यही है, आए सीबीआई ऑफिसर कुछ खोजबीन करने और बन गए बाबा के बच्चे। यही होता है सब जगह। तो हम सभी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है विश्व सेवा, विश्व को सकाश देना, प्योर वाइब्रेशंस देना, अपनी स्थिति को सुंदर बनाकर रखना। हम मान लें हम यज्ञ की ब्यूटी हैं, ब्यूटी हैं हम यज्ञ के लिए। हमसे यज्ञ सजा हुआ है, हम श्रृंगार हैं यज्ञ के, हैं या नहीं हैं? महान आत्माएं हैं। बाबा कहा करते थे, तुम अपने भाग्य को अभी नहीं जानते, एक समय आएगा जब संसार तुम्हारे भाग्य का गुणगान करेगा, तब तुम कहोगे वारे मैं, मुझे तो पता ही नहीं, हम इतने बड़े हैं, हम इतने भाग्यवान हैं। संसार आप सबके चरणों को छूकर, धूल तो चरणों पे होती नहीं आजकल, अपने को धन्य मानेगा जो भगवान के साथ रहे हैं, जिन्होंने भगवान का कार्य किया है, जिन्होंने अपने जीवन को प्रभु प्रेम में अर्पित कर दिया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। जिन्होंने संसार की इच्छाओं से मुख मोड़ लिया है, समझे सभी जो समर्पित हैं, आपका त्याग आपका बलिदान है। एक एक का त्याग संसार के लिए आदर्श है। मैं सुना रहा था एक दिन, यहाँ सुनाया या कहाँ, वेद प्रकाश वैदिक जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, आर्य समाजी हैं कट्टर, दो तीन साल पहले यहाँ आए थे तो किचन में भी आए, काले से कपड़े पहने थे, मेरे से परिचय हो गया, किचन घुमाया जा रहा था उनको, सारी बातें लोग उन्हें बता रहे थे। जब कॉन्फ्रेंस में भाषण किया, लोग तो 5-6 हजार ही थे, पर उन्होंने कहा मैंने ऐसी सभा संसार में कहीं नहीं देखी जहां 25,000 ब्रह्मचारी बैठे हों। ये छोटी बात नहीं है, पवित्र जीवन बना लिया बहुत बड़ी बात हो गई। कलयुग गंदगी से भरा हुआ केवल वायरस नहीं है, काम के वायरस बहुत जबरदस्त फैले हुए हैं, विकारों के वायरस संसार को जला रहे हैं। उनसे बचकर बाबा की शीतल छाया में आ जाना बड़े भाग्य की पहचान है। इसलिए अपने त्याग को महत्व देते हुए अपनी स्थिति को बहुत श्रेष्ठ रखेंगे। ये यज्ञ हमारा है, हमारा। सभी सबके अंदर ये भावना होगी, पर मैं फिर भी आपको कह रहा हूं, इस सुंदर विचार को अपने अंदर समा लो। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, बिल्कुल कॉमन उदाहरण है। यज्ञ में हम लोगों ने अनेक बार अकाल देखा। जब ऊपर ही था, 4-4 साल बारिश नहीं हुई, दादी का आदेश रहता था हर व्यक्ति आधी बाल्टी पानी से ही नहाएगा। कई सोचते थे बाथरूम में कौन हमें देखने आ रहा है, हम तो 2 से नहाएंगे। बोलो ये विचार कितना सुंदर है, हम तो देख रहे हैं ना, हम तो देख रहे हैं। हमें याद है यज्ञ में पार्टी आती थी, बहुत साल पहले की बात, 40-35 साल। हम लोगों के पास 10 कमरे थे, मधुबन वालों के पास, ऊपर मधुबन में 10 कमरे हैं, लाइट हाउस जिसकी बिल्डिंग का नाम है। हम 10 के 10 कमरों को दादी कह देती थी सबको खाली कर दो, आप कहीं भी सो, हर कमरे में 10 बाबा के बच्चे सोएंगे, 100 सोएंगे, प्लस हो जाएंगे ना 100। हम बड़े खुश होते थे कि हमारे छोटे से त्याग के कारण 100 लोगों को भगवान से मिलने का मौका मिलेगा। सचमुच हम बहुत खुश होते थे, कहीं भी सो जाते थे। गर्मी का मौसम होता था, छतों पे सो गए, बरांडों में लगा ली खाट, कमरे सारे खाली, सामान अंदर है हमारा, वो भी यूज कर रहे हैं हमारा और हम भी यूज कर रहे हैं, सब चलता, हम बहुत खुश होते थे। क्या हम यज्ञ को अपना मानते हैं? मैं सोचा करता हूं, बहुतों को देखता हूं साक्षी होके, कि यदि ये खुद कमाते होते तो क्या ये इस चीज को इस तरह यूज करते होते? नेवर। चाहे कोई मनुष्य 50,000 भी कमा रहा हो, आजकल 50,000 भी ठीक ठीक है, तो भी कोई व्यक्ति इस तरह खुले दिल से नष्ट नहीं कर सकता कुछ। उसको ख्याल रहता है, बच्चे हैं, पढ़ाई पढ़ानी है उनको, बीमारियों के लिए भी रखना है कुछ, भोजन भी सब। तो क्या हम यज्ञ को सचमुच अपना मानते हैं? चेक योर सेल्फ। मैं यज्ञ को निर्विघ्न रखने की बात कह रहा था आपको, मैं 1-2 उदाहरण देता हूं बस, आप सब बुद्धिमान हैं, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं। हमारे पास समर्पित होने के लिए कई भाई आते हैं, आप भी बैठे होंगे यहाँ कई। अभी ज्ञान सरोवर में आजकल मैं तो नहीं देखता ये सब काम, लेकिन 25-30 साल मैंने ही ये काम किए हैं, तो मेरे पास आती हैं, ये भाई समर्पित होने आया है, लेकिन रात को 2 बजे तक फोन पे लगा रहता है। मैं कहा उठता कब है कि ये तो पता नहीं, हम सब तो क्लास में चल जाते हैं, उसके बाद नाश्ते पे इसके दर्शन होते हैं। एक को मैंने बुलाया, बहुत प्यार से उसको समझाया, समर्पित होकर क्या करोगे भाई तुम। मैंने उसको अच्छी तरह समझाया और वो समझ गया। मैंने उसे कहा वही बात आपको कह रहा हूं, भाई तुम्हारी ये जो दिनचर्या है, अब तुम 2 बजे सो रहे हो, सवेरे 8 बजे तक सोना ही पड़ेगा निश्चित रूप से, योग आदि नहीं होगा, तुम्हें देख के 2-4 भी ऐसा ही करेंगे, इससे यज्ञ कमजोर हो रहा है, इसलिए यहां तुम्हारा रहना तुम्हारे भले में नहीं है। उसने समझ लिया और कहा भाई मैं इस आदत को नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं सेवा करके जाता हूं। गया वो, समझ गए ना सूक्ष्म बात। हम यज्ञ को पावरफुल बनाने वाले हैं। बाबा जब यज्ञ छोटा था, मधुवन छोटा था, हम सबसे बहुत मिलते थे अभ्यक्त बाप दादा, अब तो आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक एक से अच्छी तरह मिलते थे, बहन जी को पता होगा, खूब अच्छी तरह दिल भर के हम कुछ पूछ सकते थे बाबा से, बाबा हमें उत्तर देते थे, अच्छी बात सिखाते थे। जब मैं छोटा था 3 बार बाबा ने मेरे से पूछा तुमसे सब संतुष्ट हैं, अब पहली बार में तो मुझे समझ भी नहीं आया, कुछ गर्दन ही हिला दी, ऐसे ऐसे किया, बाबा से डरते भी थे ना छोटे थे। दूसरी बार फिर पूछा सब संतुष्ट हैं, मैंने कहा थोड़े तो हैं। तीसरी बार फिर पूछा सब संतुष्ट हैं, मैंने कहा नहीं बाबा 3 तो नहीं है। अब मैं देखता तो 3 लोग संतुष्ट नहीं थे, दूध बांटते थे तो एक माता जी का गिलास वो बड़ा होता था हरियाणा वाला पुराना, 1.25 किलो दूध आता है, वो कहती थी भर दो इसे, हम भरते नहीं थे, वो नाराज होती थी। मैंने कहा 3 नहीं है ना बाबा संतुष्ट। बाबा ने कहा अच्छा ये बताओ इसका कारण तुम हो या वे। तो पता नहीं मेरे पास थोड़ी सी बुद्धि थी, मैंने कहा मैं ही हूं। मैं सोचा उसका भर ही दूं तो क्या जाता है, दूसरे कई लोग ऐसे भी तो हैं जो पीते नहीं है। मैंने कहा गलती तो मेरी है। बाबा ये उत्तर सुन के बहुत खुश हुए और कहा अपनी गलती जानना और स्वीकार करना ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। तो एक राज और बताया था इन 3 दिनों में, खुद संतुष्ट होंगे तो दूसरों को संतुष्ट कर सकेंगे। तो मैं बात कह रहा था बाबा बहुत मिलते थे हम लोगों से, और बाबा एक बात बहुत कहते थे किले को मजबूत करो। अब सच नहीं, उनका नहीं बताया था, बस इतना ही हुई थी बात। तो बाबा कहते थे किले को मजबूत करो। अब हम छोटे थे, हमारी कुछ समझ में नहीं आता था किले को मजबूत कैसे करना। बाबा कहते थे एक ईंट भी कच्ची हो तो दुश्मन उसी को निकाल कर औरों को निकाल देगा, किले को जीत लेगा। पीछे पता चला, दादियां थोड़ा थोड़ा सुनाती थी कि हमारे संगठन में कोई भी असंतुष्ट ना हो, वो कच्ची ईंट हो गई ना, बाहर जाके गड़बड़ कर सकता है, कुछ अंदर के समाचार बाहर भेज सकता है, भाई कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है ना, बड़ा संगठन है। टकराव भी आपस में ना हो, ये दोनों चीजें और प्योरिटी बहुत अच्छी हो, ये 3 चीजें इस किले को मजबूत करती हैं। सब संतुष्ट हों तो हम एक दूसरे से ऐसा व्यवहार करें, टकराव से बिल्कुल मुक्त रहें, दूसरों को भी रखें। अब ये अलग एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा, टकराव से मुक्त रहना, हमें झुक के चलना है, दूसरों को सम्मान देते हुए हाजी करते हुए चलना है। मेरे पास हाजी की अपनी बहुत अच्छे अनुभव है सुंदर। मैंने पहले ही संकल्प कर लिया था, भोली दादी को देखते थे, भोली दादी के पास थे हम, भोली दादी किसी को ना नहीं कर रही है और सबसे ज्यादा काम कर रही है। उन दिनों यज्ञ में ये लहर होती थी, हमने भी प्रतिज्ञा कर ली हम भी किसी को ना नहीं करेंगे। अब एक चैलेंज था, लेकिन मुझे इतने डिवाइन अनुभव हुए हैं यज्ञ सेवा में हां करने के, 900 लोग मधुवन में, अगले दिन गुरुवार, मेरे पेट में बहुत दर्द, उन दिनों कच्चा पानी पीते थे ना हम, ये मिनरल आदि नहीं था तो पेट सबके गड़बड़। दादी ने मुझे बुलाया और कहा कल मालपुआ बनाना है भोग में, 900 मालपुए बनेंगे, हमें 4 घंटे चाहिए, इतने ज्यादा साधन नहीं थे। मैंने कहा हाँ दादी। हम चले आए, हमारे मेरे पेट में दर्द था, आपको बता दूं, हमारा डॉक्टर वनारसी राम श्लोक भाई, ये सब हमारे साथी थे, आतम भाई। तो सब 2 बजे उठे, कई तैयारी करनी पड़ती है उसकी। 8:30 बजे तक सारा मालपुआ बन गया और मालपुए का परिणाम ये हुआ, मेरा पेट दर्द गायब हो गया। ये तो बहुत बार हुआ है, क्योंकि दवाई यज्ञ में होती नहीं थी, न पैसा था, और यज्ञ सेवा हम लोगों को ठीक करती थी। कई बार के अनुभव हो गए। अब इंग्लिश हम पढ़ के तो आए थे, लेकिन 4 साल हो गए थे हमें यहाँ, 72 की बात है, सब भूल गए थे, क्योंकि न कोई बोलना है न किसी को चर्चा है, और बाबा भी कहता सब कुछ भूल जाओ, हमने सोचा अंग्रेजी भूल जाओ। तो 3 अंग्रेज आए पहले पहले, दादी ने मुझे बुलाया, 3 लोग अंग्रेजी जानने वाले, दादा आनंद किशोर निर्वैर भाई आए थे उन दिनों, थोड़ी बहुत मैं, क्योंकि मैं टाइपिंग करता था तो दादी को पता था, तो मुझे बुलाया कि मुरली के बाद तुम इन 3 को मुरली रिपीट कराना 1/2 घंटे में। और मैंने कहा हाँ दादी, मैं आपको ये वरदान बता रहा हूं। और मुझे ऐसा फील हुआ, हां कहते, कि मेरी इंग्लिश की सारी नॉलेज अंदर में जागृत हो गई और मैं उनको 1/2 घंटा मुरली रिपीट कराने लगा। ये वरदान। दीदी मनमोहिनी थी, मनन पर चर्चा हो रही थी रात्रि क्लास में, कहा कौन कौन मनन करते हैं, मैंने भी हाथ उठा लिया, तो कल एक टॉपिक पर लिख के लाना। तो मैं ले गया आत्मविश्वास पर। दीदी ने पहले मुझे ही कहा क्या लिखा है सुनाओ आके। दीदी बड़ी खड़कदार थी, हाँ सूर्य क्या लिखा है, आओ इधर बैठो सुनाओ। अब मैंने सुनाया, दीदी ने कहा इतना अच्छा लिखते हो, ज्ञानव्रत में हर मास 2 लेख लिखा करो। मैंने कहा दी दीदी, और ये वरदान हो गया। ये मैं आपको हाँ करने की बात बता रहा हूँ। यज्ञ में किसी को गीत लिखने गीत गाने नहीं आते थे। जन्माष्टमी थी मुझे याद है शायद 70 की। दीदी ने मुझे बुलाया, क्योंकि दीदी ने मुझे समर्पित कराया था तो उनसे विशेष नाता था। कहा कल जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी पर एक गीत बना लो और फिर उसको सुनाना क्लास में। मैंने कहा जी दीदी। अब देखो गीत लिखना मैंने कभी जिंदगी में नहीं लिखा था, लेकिन हाँ जी करने से वो टैलेंट वरदान के रूप में प्राप्त हो गया और फिर बहुत गीत लिखे मैंने। हम लोगों ने 12 साल यज्ञ में कल्चरल प्रोग्राम दिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ हाँ जी करने के लाभ, दुआएं मिलती हैं। तो हम इस यज्ञ को ऐसा स्ट्रांग करेंगे, सब एक हैं, सब एक, हमारी संगठन जैसा संगठन संसार में अन्यत्र नहीं है। ये संगठन बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ डेडिकेशन है हमारे यहाँ, क्योंकि ज्ञान सरोवर में विंग्स के प्रोग्राम चलते रहे, बड़े बड़े लोग आते थे और वो ये बताते थे हमें कि आपके यहाँ जैसा संगठन है अगर गवर्नमेंट के पास हो तो न जाने वो क्या क्या कर दें। डेडिकेशन है यहाँ, डेडिकेशन समझते ना, कुर्बानी की भावना, जो काम जिसको दे दिया वो कंप्लीट करना है, सुपरवाइजर की जरूरत नहीं, किसी ऑफिसर को पीछे रखने की जरूरत नहीं, हर व्यक्ति जिम्मेदार है। इसको कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन संगठन है हमारा। तो ये बहुत स्ट्रांग है, हम सभी बहुत भाग्यवान हैं जो ऐसी यज्ञ सेवा हमें मिली है। मैं थोड़ी गुह्य बातों की और आपको ले चलता हूं। निष्काम भाव से सेवा करना, मैं थोड़े उदाहरण ही दे देता हूं ताकि आप सीख लें। कोई व्यक्ति हमारे पास कुछ लेने आता है, तुरंत हमें याद आता है 6 मास पहले इसने मुझे ये चीज नहीं दी थी, इसको भी नहीं देनी है, हम उसे ना कर देते हैं। कैसा है ये विचार, कितना सुंदर है, नहीं है ना सुंदर? निष्काम भाव नहीं है, उसने नहीं दिया था लेकिन हम तो महान हैं, हम उसको देंगे जिसने किसी को कुछ नहीं दिया। ये यज्ञ बाबा का है ना, माल सब बाबा का है। हमारा नहीं है, हमने कुछ नहीं बनाया, हम तो मौज से आके खा पी रहे, आनंद मना रहे हैं, हमारे जैसी पालना किसी की होती ही नहीं। मैं सोचा करता हूँ जब हम छोटे थे और यज्ञ में आए, और यज्ञ में ऐसा कुछ ज्यादा नहीं था, लोग हमसे पूछते हैं तुमको फील नहीं होता था? फील, हम कहते परम आनंद था, हवाई चप्पल पहनी है, आनंदित हैं, पूरी सर्दी में जुराब भी नहीं है, ठंड का आनंद ले रहे हैं पैर भी और हम भी। तो ये तो मनोस्थिति है ना, हम जिस चीज का आनंद लेते हैं। लेकिन जब हम दूसरे को देखते हैं, इसके पास फर्स्ट क्लास जूता, मेरे पास नहीं है, वहां गड़बड़ होती है। हम निष्काम भाव धारण करें, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सेवा में बाबा ने तीन शब्द बोले हैं और बहुत पावरफुल्ली बोला है, निमित्त भाव से सेवा करने से ही सेवा सफल होती है। मैंने किया ऐसा संकल्प रखने से हमें ईश्वरीय बल नहीं मिलता है। सच तो यही है कि इस संसार में हम सब कोई कुछ नहीं कर रहा है, सब परमात्मा शक्तियों से हो रहा है, सब परमात्मा शक्तियों से हो रहा है। मैंने यहाँ शांतिवन में शुरू से कई एक्सपेरिमेंट्स किचन में किए थे, 10,000 लोग आते थे पहले, भोजन 2 घंटे में बनता था, फिर 12 आने लगे तो भी 2 घंटे में ही बनता था, फिर 15-16 आने लगे तो भी 2 घंटे में बनता था, फिर 20-22 आने लगे तो 1.25 घंटे में ही बनने लगा, 25-28 हजार आने लगे 1.5 घंटे में ही बन जाता है। हमने ये एक्सपेरिमेंट किए थे सूक्ष्म रूप से। संगठन अगर यूनाइट है, एक है, कोई टकराव नहीं, सब में बहुत प्रेम भाव और अपनापन है, तो कार्य शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। और बाबा का ये महावाक्य सबको प्रयोग में करके देखना है। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं, अब बाबा का तो बड़ा भारी महावाक्य है, मनुष्य की समझ से भी परे का है, लेकिन मैं सुनाता हूँ, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं है, एज इट इज सुना रहा हूँ। जो बच्चे साक्षी भाव में स्थित रहते हैं, वे 1 घंटे 1 मास का काम 1 घंटे में कर सकते हैं, 1 मास का काम 1 घंटे में, अर्थात 1 दिन का काम 2 मिनट में। सोच के देखो कितने काम है हम सबको, सारे दिन में 2 मिनट में कर लेंगे, अर्थात हमारी कार्य शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो निष्काम भाव धारण करेंगे। मुरलियां चली हैं बहुत, अभी पीछे भी चल चुकी हैं अव्यक्त मुरलियां कई, आपको याद दिला दूं, ओम शांति भवन में कॉन्फ्रेंसेज होती रही 83 से, और ये मुरली जो अब हम सुन रहे हैं 86 की हैं, और इनमें आप शुरू में सुन चुके हैं। एक मुरली में डिटेल था, डिटेल क्या था, प्रैक्टिकल हो गया था कि मधुबन निवासियों में ये चर्चा का विषय बन गया कि सारी सेवा हमने की और किसी ने आकर 15 मिनट भाषण कर दिया, नाम उसका हो रहा है। तो बाबा जब उसके बाद आए तो बाबा ने ये मुरली चलाई थी। बाबा ने कहा जो बर्तन साफ करने वाला है, जो सफाई करने वाला है, उसका भी पूरा योगदान है कॉन्फ्रेंस की सफलता में। तब तो लोग खुश होते हैं, यहाँ कितनी सफाई है, जिसने जो कार्य किया सब सफलता में अधिकारी हैं इक्वली। तो निष्काम भाव किया और प्रभु अर्पण, सभी जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं वो ये अभ्यास करें जीवन में, बड़ी से बड़ी सेवा की करने करते समय भी कि बाबा की शक्तियां मेरे साथ काम कर रही हैं, निमित्त भाव, और करने के बाद सब कुछ समर्पित। हम जैसे बीच में थे केवल, किया भी तुमने, तुमको वापिस अर्पित, बल्कि एक सूक्ष्म काम सभी कर दिया करें। जो भी अच्छी सेवा करें, श्याम को बाबा को अर्पित करते हुए संकल्प भी दे दो, इस सेवा का पुण्य विश्व में पहुंचे। ये सुख जो आज मुझे मिला है, ये अनेकों के दुख समाप्त करे, ये तुमको अर्पित। तो हम सभी योगियों की एक बहुत सुंदर धारणा है, आप सभी को बाबा का महावाक्य याद दिला देता हूं, कर्मातीत अवस्था अर्थात, लिख लेंगे इसको, नोट डाउन प्लीज, आपको काम आएगा और इसकी प्रैक्टिस करनी है सबको। कर्मातीत अर्थात कर्म के परिणाम से परे, कर्म के प्रभाव से परे, परिणाम नहीं प्रभाव से परे, और कर्म के परिणाम के प्रभाव से भी परे, यह अव्यक्त बाबा की महावाक्य, हमें इसको अपनी प्रैक्टिस में लाना है। कर्म कर रहे हैं उसका जो प्रभाव रहता है, कभी थकाता है, कभी किस तरह की निगेटिव फीलिंग रहती है कर्म में, कभी कोई उल्टा सुल्टा संकल्प चलता है, उससे परे निमित्त भाव से मैं कर रहा हूं। जब मनुष्य सोचता है मैं कर रहा हूं तो दूसरे की ओर भी देखता है, ये नहीं कर रहा है, मैं ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन मान इसका ज्यादा है, काम मेरा, नाम इसका, ये संकल्प संगठनों में चलने बड़े स्वाभाविक हैं। लेकिन हमने किया और प्रभु अर्पण, नाम तुम्हारा ही हो, पड़ोसी का भी हो तो हम और खुश, बल्कि हमारे कारण किसी और का नाम हो जाए। मेरे पास वो डॉक्टर गिरीश पटेल है ना, बॉम्बे वाले साइकेट्रिक, मेरे पास कभी कभी आते, अभी तो कम मिलते हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा, तो यहाँ भोजन पे आते थे, मुझे कहते थे आज लोग मुझे बहुत धन्यवाद दे रहे थे। मैंने कहा अच्छी बात है, आप अच्छे काम करते कि नहीं, क्लास तो तुमने कराई थी, वो सोचते हैं मैंने कराई, हम दोनों के चेहरे एक से मिलते हैं तो मुझे कहते अरे डॉक्टर साहब आपने इतनी अच्छी क्लास कराई, मजा आ गया, मैं भी चुपचाप सुनता रहता हूँ, खुश होता रहता हूँ। मैंने कहा खुश तो हो ही लिया करो, इसमें क्या जाता है, हम सभी बहुत लिबरल हो जाएं, विशाल दिल, ये यज्ञ बाबा ने रचा है, इस यज्ञ की सफलता बाबा की सफलता है, हमारी सफलता है, हमारे इस महान ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सफलता है। हम लक्ष्य बना ले, हमें अपने कुछ त्याग करने पर भी इसे सफल करना है, हमें त्याग करना पड़े, हमें को सुनना पड़े, हमें सहन करना पड़े, तो भी बाबा के यज्ञ को हमें सफल करना ही है। हम यज्ञ हर चीज को यज्ञ समझें, ये नहीं यज्ञ तो ये बड़ा है या सेंटर्स हैं, जहां हम कार्यरत हैं वो भी यज्ञ है। इसलिए अपने जीवन को भी एक यज्ञ बना दें, अपने कार्यों को भी यज्ञ बना दें, और अपने जीवन को सभी बना दें तीर्थ, चलता फिरता तीर्थ। चिंतन करेंगे इस पर, हम सभी का एक एक का जीवन चलता फिरता तीर्थ है। तीर्थ पर लोग जाते हैं, पुण्य समझते हैं, हम चलते फिरते तीर्थ। मैं आपको सुनाऊं, मुझे एक मेरी घटना याद आ गई, कई साल पहले मैं नेचर क्योर करने के लिए हिमालय में गया, अपना ही एक डॉक्टर भाई किसी सन्यासियों के आश्रम में रहता था, अब वो दूसरी जगह है, उसने कहा मेरे पास आओ। हिमालय में गए तो सन्यासी थे, उनका आश्रम था, एक गुरु भी था, कई लोग समर्पित सन्यासी थे वहां, और नेचर क्योर का आयुर्वेदिक दवाइयों का उन्होंने खोला हुआ था। ये जो भाई है यही वो फार्मेसी भी चलाता था, उनकी दवाइयां आदि बनवाता था। तो मैं छत पर घूमता था ऐसे ही, कपड़े मेरे सफेद नहीं होते थे सदाई, वो कभी मिट्टी लगा देते थे कभी और कुछ, तो एक रंगीन सी पैंट मैंने खरीद ली थी और मैं वहां घूमता था छत पर। तो वो मुझे अपने कमरे से देखता था, उसका कमरा थोड़ा सा दूर था। तो जब हम उससे मिलने गए, देखो व्यक्ति जो अच्छे सन्यासी होते हैं उनकी भी वाइब्रेशंस और परख शक्ति कैसी अच्छी होती है। कहा आप हमारे यहाँ आए हो, मैं अकेला ही था, आप हमारे यहाँ आए हो, मुझे देखकर लगता है आपका जीवन चलता फिरता तीर्थ है। अब मैं सोचिए तो मैंने पहली बार सुना भाई, अच्छा सन्यासी था, विद्वान भी था, MSc किया हुआ था और अच्छा स्कॉलर था, अच्छा साधक था, शिष्य वगैरह नहीं थे उनको, वहीं बस अपने आश्रम में वो 5-7 सन्यासी रहते, सारा दिन की उनकी साधना और थोड़ा बहुत कार्य जो होता था, गाय रखी हुई थी। तो मुझे तब से ख्याल हुआ हम सब का जीवन चलता फिरता तीर्थ बन जाए, ऐसा समय आएगा हमारा दर्शन करके ही लोग ऐसा अनुभव करेंगे तीर्थ कराए। तो बाबा का बहुत ही सुंदर समय, जय जयकार का समय हम सब का इंतजार कर रहा है। ये विश्व सेवा की हम बात कर रहे हैं, ये यज्ञ सेवा हमें योगी बनाने वाली है। ऐसा अनुभव कर लें, जितनी यज्ञ सेवा करेंगे उतना ही योग सुंदर लगेगा, उतना ही हम हेल्दी रहेंगे। यह यज्ञ मन इच्छित फल देने वाला भी है, हम इस यज्ञ को साधारण न सोचें, अपने लिए भी ये न सोचें हम तो यहाँ काम कर रहे हैं, भाई हमारे पास ये टैलेंट है, हम कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट हैं, हम अच्छे आर्टिस्ट हैं, हम ये काम नहीं कर रहे हैं, वही काम जो संसार में होते हैं वही कार्य यहाँ महान यज्ञ सेवा है। भोजन के लिए तो बाबा बहुत ध्यान दिलाते हैं, भोजन अगर प्यार से और योगयुक्त बनाया जाए तो भोजन बहुत बड़ी चीज है, ब्रह्मा भोजन है। तो ये यज्ञ सेवा हमारे लिए वरदान है, हमारी स्थिति को महान बनाने वाली है। यज्ञ सेवा यदि हमारी स्थिति को डिस्टर्ब करे तो हमें समझना होगा कि हमसे यज्ञ सेवा करना नहीं आता। हम अपने को स्वीट बनाएं, सॉफ्ट बनाएं, और विशेष रूप से मैं कहना चाहूंगा एक साथ कमरों में सभी रहते हैं, अलग अलग कमरे तो नहीं हैं, कहीं 5 रहते होंगे, कहीं उससे भी ज्यादा, सेवाधारी जो हैं वो तो और भी ज्यादा रहते हैं। कमरों में एक दूसरे के क्या गुड फ्रेंड, एक दूसरे का ध्यान रखने वाले, अपनी इच्छा पूर्ण करने वाले नहीं। ये नहीं कोई सोया हुआ और हम फोन से जोर जोर से बात कर रहे हैं, ये रॉयल संस्कार नहीं, ये राजाई संस्कार नहीं। हमें पता हो जब भारत में राजाएं होते थे, अच्छे राजा, ये अब कलयुग के अंत के राजा नहीं, तो राजा जिम्मेदार होता था अपने राज का, वो चक्कर भी लगाता था कि मेरे राज में रात को कोई रोता तो नहीं, कोई भूखा तो नहीं सोता, किसी को कोई सताता तो नहीं। ये सफल राजाओं के लक्षण दिखाए हैं इतिहास में, जो अच्छे राजा हुए उनका भी अपने लिए कुछ नहीं। महाराजा रणजीत सिंह तो अभी ही था, सिंहासन पर भी नहीं बैठता था, मोड़े पर बैठता था। हर्षवर्धन सम्राट भारत का, उज्जैन में सम्राट था वो, हर 5 साल में अपना सारा खजाना दान कर दिया करता था, अपने कपड़े और मुकुट और गले की मालाएं हाथों के सब दान कर देता, उसकी बहन फिर उसे देती थी सब, हर 5 साल में। ये भारत की बहुत बड़ी मान्यता है यहाँ की कल्चर की, और वो हम सभी हैं, वो इतिहास के हीरो एक्टर यही हैं सब, आप में से भी कोई हो सकता है। तो हम राजा ही संस्कार बने क्या? सारे ही हैं हर जगह, क्योंकि सृष्टि तो बहुत बड़ी है ना, किसी ने कहीं किसी फील्ड में हीरो पार्ट बजाया है, किसी ने कहीं बजाया है, बहनों ने बजाया है, आप बहने ही थोड़ा ही होंगे सदाई, भाई भी रहे होंगे। तो हम राजाई संस्कार धारण करें, अर्थात दूसरों का ध्यान रखने वाले। बाबा सिखाते थे, तुम रात को उठे हो और तुम ऐसे चले हो कि तुम्हारे चलने की आवाज से दो और उठ गए, इसका सूक्ष्म दोष आप पर आएगा। ये सूक्ष्म गति बाबा सिखाते थे। हम तो जब किचन में पहुंचे तो विश्वतन दादा सिखाया करते थे, रोटी एक भी जल गई, खाने वाले को जो संकल्प चला उसका दोष तुम पर आएगा। ऐसे कड़े डिसिप्लिन्स थे कर्मों के थोड़े। तो हम सभी महान आत्माएं हैं, सब बुद्धिमान हैं, बाबा के यज्ञ को सफल करने वाले हैं। इस महान यज्ञ में हम सब एक दूसरे को सुख देने वाले, सब एक दूसरे के दुख हरने वाले। किसी को कोई शारीरिक बीमारी भी हो जाए, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बनकर उसे मदद करेंगे। ये नहीं कि भोग रहा है, पाप किए होंगे भोगने दो, ये नहीं। हम उसके, चलो उसने पाप भी किए हों लेकिन हमें तो पुण्य करना है ना, हम उसके सहायक बने, उसके कष्ट निवारक बने और इस महान यज्ञ को इतना महान बना दें कि यहाँ से विनाश ज्वाला प्रकट होने से पहले शांति की तरंगे प्रकट हों, पवित्रता के वाइब्रेशन संसार को निष्पाप करने लगें, हम सब की शुभ भावनाएं दूसरों के दुख हरने लगें। तो बहुत अच्छा, ऐसी बट्टी सुधीर भाई अब होती रहें जल्दी जल्दी। लास्ट बट्टी का लास्ट दिन, लास्ट क्लास। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जिन्होंने पहले बट्टी की थी उनकी कुछ दिनों के बाद रिपीट हो, रिपीटेडली फिर से ये भट्टियां ऐसे ही हों। भाई यही तो हमारा जीवन है, बाबा ने चांस दिया, कोरोना को भेजा है, जाओ मेरे बच्चों को योगी बनने में मदद करो, कई ठंडे हो गए, थोड़ा जगा दिया है, हम सब भी जग गए हैं। तो प्रकृति को भी थैंक्स और अपने जीवन को भी थैंक्स देंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, 6 से 8 रोज योग भट्टी है, सभी हिस्सा लिया करें और पर्सनली भी अपने जीवन को योग भट्टी में रख दें।